माननीय बनना है तो। क्या सुंदर बातें हैं बाबा की। और अंतर्वाहक शरीर की सेवाएं याद है ना, कौन सी दो धारणाएं चाहिए, डबल लाइट और बोलो दूसरा बिल्कुल जुड़ा हुआ कर्म बंधन मुक्त। ये दो सुंदर धारणाएं बाबा ने बताई। और आज मुरली क्या थी, विशेष पढ़ाई, क्या नशा होना चाहिए, और विकर्म विनाश करना है तो वो तो सदा की बात है ना, पर आज की मुरली में वो भी बहुत अच्छा था। विकर्म विनाश करना है तो याद की यात्रा में रहो, उससे विकर्म विनाश होंगे, कर्मातीत होंगे। तो मधुवन में रहकर याद रहती है माताओं को या और कुछ कन्याओं को, याद या योग, दादी जान की जब क्लास कराई गई, याद और योग दोनों में अंतर है, बताओ क्या? ऐसे ही फोर्स से बोलते, याद सिंपल चीज जैसे हम किसी को भी याद करते हैं, और योग अर्थात उत्तर देना है, मौन बाबा नहीं, मौनी बाबा नहीं, योग अर्थात कनेक्शन जोड़ना, बाबा के स्वरूप पर स्थिर होना, अपनी बुद्धि को स्थिर करना। तो पढ़ाई पर बहुत ध्यान, इसका मतलब क्या है, पढ़ाई पर बहुत ध्यान। तो कोई क्या करते हैं, मुरली रखते हैं साथ में, बार बार पढ़ते हैं, और ये भी अच्छी बात है, लेकिन और पढ़ाई पे ध्यान माना, पढ़ाई पे ध्यान माना जो हमारी एक तो स्टूडेंट लाइफ हो जाए, और जो बाबा हमें पढ़ाई में पढ़ाते हैं उसको मनन करके धारण करना है। मनन भी क्यों करना है, ताकि वो हमारी धारणाओं में आ जाए। तो बाबा का कितना रिगार्ड होना चाहिए, जो बाबा हमें विश्व की बादशाही देता है, और सोचो जो बाबा हमारे लिए श्रेष्ठ भाग्य लाया है। गीत क्या था, बाबा को पाकर क्या पाया, नहीं जहान की बात आज थी नहीं, बहुत सुख मिला, जिस बाबा ने हमें बहुत सुख दिया है उसका कितना रिगार्ड होना चाहिए, और उस पर तो कुर्बान होना चाहिए। कुर्बान का अर्थ ये नहीं होता घर छोड़ के इधर आ जाओ, कुर्बानी सब कुछ उसके लिए, उसके लिए सब विघन सहने को तैयार। आज था ना मुरली में, कई बाबा के बच्चे कहते हैं हम कुछ भी विघन सहन करेंगे लेकिन तुम्हारे बन कर रहेंगे। भगवान के बनने वालों को लोग ज्यादा रोकते हैं, माया का बनने वालों को साथ देते हैं, हम भी वही हैं, तुम भी वही चलो, और भगवान की तरफ चलते हैं तो कहेंगे तुम कहाँ जा रहे हो इधर। तो हमें मान का त्याग करना है। कैसे होगा ये, मान सबको चाहिए, ऐसा संसार में कोई प्राणी नहीं जिसको मान न चाहता हो। कुत्ते को भी आप प्यार से जरा पुचकार दो, चुपचाप पूंछ हिला के बैठ जाएगा आपके पास, और जरा डांटो डपटो तो भौंकने लगेगा। सबको प्यार भी चाहिए, मान भी चाहिए। कैसे हो ये त्याग, कुछ में ज्यादा इच्छा होती है, जिनमें देह अभिमान ज्यादा होता है उन्हें मान की ज्यादा इच्छा रहती है। और बाबा ने ये भी कहा जिन्हें देह अभिमान ज्यादा है उन्हें ही अपमान भी ज्यादा फील होता है। मुझे ये नहीं कहा, मुझे बैठने को नहीं कहा, मुझे और कुछ नहीं पूछा, अपमान फील होता है। लेकिन जो आत्माएं किसमें रहती हैं, स्वमान में रहती हैं, उन्हें इतना मान मिलता है अंदर कि मन की इच्छा छोटी लगती है। तो बाबा का ये महावाक्य याद करेंगे, जो स्वमान में रहते हैं, लिखा हुआ है स्लोगन जानता नहीं, उन्हें प्रकृति और भगवान दोनों सम्मान देते हैं। बात ये मोटी नहीं है, सबसे सूक्ष्म है। प्रकृति सम्मान देना अर्थात सहयोगी बनना, क्योंकि हम प्रकृति के मालिक हैं। जो मालिकपन के नशे में रहेंगे, उनको जिस चीज की जरूरत होगी प्रकृति वही देने लगेगी। तूफान हो रहा, तेज बारिश हो रही है और आपको क्लास में आना है। अब दो बातें हैं, कई माताएं सोचेंगी अब भीग के कहां जाएंगे, इधर ही बैठ के सुन लेते हैं, स्पीकर पे आवाज तो आ रही है। और कोई क्या सोचे, मैं प्रकृति की मालिक हूँ, प्रकृति 5 मिनट के लिए शांत हो जाओ, भगवान पढ़ाने आ रहा है, मुझे वहां जाना है, मदद कर दो। क्या करेगी प्रकृति, मदद करेगी, रुक जाएगी। ये होगा उसका सम्मान देना। सभी को इसके अनुभव करने ही चाहिए जीवन में, इसलिए बहुत अच्छा स्वमान हो। और प्रकृति को कौन से स्वमान चाहिए, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। प्रकृति सम्मान देती है हमारी पवित्रता को, क्योंकि हमारे पवित्र वाइब्रेशंस प्रकृति को भरपूर करते, ये उसको मदद करना है। दूसरा, प्रकृति, मैं प्रकृति की मालिक हूँ। स्वमान जितने भी हैं, स्वमान का अर्थ ही है स्वयं को हम सम्मान दे रहे हैं। तो जो आत्मा स्वयं को सम्मान देती है, उसे संसार भी सम्मान देता है। तो हम सभी प्रकृति के भी मालिक बने, मान का त्याग करें। बहुत जगह होती है संसार में, लौकिक में भी और अलौकिक में भी, कई लोग नाराज हो जाते हैं भिन्न भिन्न कार्यों में, हमें पूछा नहीं गया, हमें बुलाया नहीं गया। अलौकिक में भी कई सेवाओं में कई लोग नाराज हो जाते हैं, हमारी राय नहीं ली गई, हमें प्रॉपर सम्मान नहीं दिया गया। लेकिन हम सम्मान लें भी तो कैसे, सम्मान चाहिए। देखिए दो बातें हो गई, सम्मान चाहिए और सम्मान मांगना नहीं है, उसकी इच्छा भी नहीं रखनी है। लेकिन सम्मान परछाई की तरह हमारे पीछे आए, उसके लिए हमें एक तो स्वमान, लेकिन अपने को योग्य बनाना चाहिए। योग्य बनना अर्थात हम सम्मान के अधिकारी बन जाते हैं। ये बात केवल अलौकिक की नहीं, घरों में आप सभी माताएं पीछे वाली सुन रही हैं या नींद आ रही है, नहीं ना? बच्चे आपको सम्मान दें, पति आपको सम्मान दे, कैसे होगा, सम्मान के अधिकारी बन जाओ। कन्याएं भी सुन लें, आपका पूरा परिवार आपको सम्मान दे। ऐसी बहुत कन्याएं हैं जिन्हें परिवार वाले अपने घर में देवी समझते हैं, ये हमारे घर में देवी है, भूल से भी नहीं कहते शादी कर लेना, तुम्हारी जो इच्छा। यह है सम्मान के अधिकारी बनना। कुमार भी ऐसे बहुत हैं, कम नहीं, बहुत हैं जिन्होंने अपनी स्थिति को ऐसा बनाया है कि माँ बाप उनको शादी के लिए विवश ही नहीं करते। जैसी तुम्हारी इच्छा, ज्ञान में नहीं भी चलते तो भी समझते हैं कि इन्होंने ये पवित्रता का मार्ग अपनाया है, ये बहुत महानता है। देखो हम जब हमारा पता चला ना हमारे परिवारों को कि हम शादी नहीं करेंगे, हमारे सारे लोग, लंबा चौड़ा परिवार होता है, सारे लोग बहुत खुश हुए और क्या कहा, हमारी हर पीढ़ी में एक ब्रह्मचारी होता आया है, अब ये है। ये बात अब से 50 साल पहले की है। तो ये सब अच्छी बातें हैं ना, हम मांगे भी क्यों, अधिकार से मान प्राप्त करें ना तो बहुत अच्छा हो जाता है। सूक्ष्म मान का त्याग कर दें, इस इच्छा से ही परे हो जाएं, लेकिन मान का त्याग करके जीवन सूखा ना हो जाए। कई लोग बोलते ज्यादा हैं, हमें मानसान नहीं चाहिए, पर इच्छा बहुत रहती है, इसमें बोलने की जरूरत नहीं, इच्छा रहती है, मुझे ये चांस नहीं दिया, देखा मेरी कोई पूछ नहीं है, या फिर कहेंगे हमें नहीं चाहिए, जोर से बोलेंगे हमें नहीं चाहिए तुम्हारा मानसान, तो इसमें क्या है, पीछे चाहना छुपी रहती है और अहम काम करता रहता है। तो हम भिन्न भिन्न तरह के मान की इच्छाओं को पहचान लें और उसका त्याग करें, लेकिन उसकी जगह ले लें स्वमान को। स्वमान होने से भरपूर मान रहता है स्वयं में, एक ईश्वरीय नशा रहता है और फिर इधर उधर कहीं भी दृष्टि जाती नहीं। बाबा की मुरलियों में ये एक बात आती रही है, शायद कल थी, तुम्हारी बुद्धि कहीं भी, तुम्हारी आंख कहीं भी डूबनी नहीं चाहिए, ये एक स्लोगन हो गया हमारा, आंख माना इस आंख की बात नहीं, लेकिन हम किसी भी तरफ आकर्षित हो ही नहीं संसार में, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, हमसे धनवान कोई, बोल नहीं रही माता है पीछे वाली, हमसे ज्यादा धनवान कोई, गरीब माताएं जो आई हैं सेवा में हाथ उठाओ जरा, देख लो अभी कह रही थी हम जैसा धनवान कोई नहीं, अभी फटाफट हाथ उठा दिया। नशा हो जाए हम जैसा धनवान, बोलो माताएं हम जैसा, अब उठाओ गरीब माताएं हाथ, अभी भी उठा दिया। सुशील बाबा कहता है गरीब बच्चे बाबा को प्रिय हैं, वो अलग बात है, क्योंकि गरीबों की बुद्धि कम भटकी होती है, उनका चरित्र भी अच्छा रहता है, बेचारों को चरित्र बिगाड़ने के लिए पैसे ही नहीं होते ना, पैसा चाहिए ना उसके लिए भी, तो आप गरीब नहीं हैं। और अगर आज से आपके मन में ये संकल्प कहीं रहता हो तो इस संकल्प को चेंज कर दो, मेरे जैसा सुखी कोई नहीं, मेरे जैसा धनवान, बहुत बड़ी दौलत है हमारी खुशी, बहुत बड़ी संपत्ति है हमारी शांति, बहुत बड़ा खजाना है प्रेम, है या नहीं, बहुत धनवान हैं लोग जिनके घरों में झगड़े हैं, प्यार नहीं है तो शांति नहीं है, उन्हें लगता है ये धन बेकार, ये बड़ा सा मकान लंबा चौड़ा बेकार है, हमें तो 2 कमरे होते, घर में सुखी होते, सब एक साथ बैठ के भोजन करते, सबको अलग अलग कर दिया बड़ा मकान देकर, सबके कमरे अलग, सब वहीं खाना खा लेते हैं, हम तो छोटे में सुखी थे, कौन सा बड़ा खजाना, सुख शांति प्रेम खुशी, ये सबसे बड़े खजाने हैं, ये सब माताओं के पास हैं, हाथ उठाओ जिनके पास है, तो आपसे बड़ा धनवान, कल सवेरे उठ के प्रकृति को कह देना मेरे से बड़ा धनवान कोई नहीं, प्रकृति खुश हो जाएगी और मालामाल कर देगी आपको। और अगर आपने कहा मैं बहुत गरीब हूँ बाबा, तो प्रकृति सुन रही है, गरीबी वापिस करेगी आपको, ये संकल्प नहीं करना है। इस रहस्य को समझ लेना, ये मैं हंसी में नहीं कह रहा हूँ, ये राज हैं बहुत बड़े। अपने अंतर मन से ये निकाल देना है, हम गरीब हैं, नहीं तो वही आता रहेगा जीवन में, हम बहुत धनवान हैं, मैं बहुत सुखी हूँ, मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं, ऐसे संकल्प करते रहना है। अंतर्वाक शरीर, बहुत दिन के बाद ये बात आई है और सभी को ये चीज स्पष्ट होनी चाहिए। सब्जेक्ट गुह्य है, आप में से जो नए बाबा के बच्चे हैं, भाई बैठा लो, इस माता को भी जगह दे दो, यहाँ बैठा लो ना ऊपर, अरे ऊपर बैठा लो अपने पास, चलो बैठ गए। कुछ यंग और बच्चे ऊपर बैठ गए ना, इसलिए मैंने कहा था बुजुर्गों के लिए जगह छोड़, अब जगह छोड़ी तुमने। हाँ बैठा लो, आओ माता जी इधर आ जाओ। अंतर्वाहक, ये पूरा शब्द है, अनंत वाहक, दो अर्थ हैं इसके। अंतर्वाहक अर्थात अंत में जो हमारी स्थिति होगी, ये वाहन है, वाहन है हमारा सूक्ष्म शरीर। आत्मा इस सूक्ष्म शरीर के वाहन में बैठकर अनंत गति से विचरण कर सकती है, इसलिए शास्त्रों में से अनंत वाहक शरीर भी कहा है, ऐसा शरीर जो अनंत गति से चलता है। सूक्ष्म शरीर की गति कितनी होगी, जो पढ़े लिखे बताएंगे, लाइट की गति कितनी है, फिजिक्स का स्टूडेंट है आप में से कोई, कन्याओं में नहीं है, लाइट की गति बहुत ज्यादा मानी जाती है, 186,000 माइल होते थे तब प्रति मिनट जब हम पढ़ते थे, अब तो किलोमीटर है, हाँ अब तो बहुत ज्यादा, अब किलोमीटर में और एक सेकंड में बहुत होगी। अनंत वाहक शरीर की गति है जो संकल्प की गति है, संकल्प किया अमेरिका में पहुंच गए, साउंड से भी तेज गति, साउंड से तो तेज गति बहुत होगी होती है, साउंड की गति तो बहुत कम होती है, लेकिन लाइट की गति से भी बड़ी गति है संकल्प की, है ना, समझ रही ना माताएं, संकल्प किया मैं अपने घर में हूं और पहुंचे ना, और जहां पहुंचेंगे वहां आपका सूक्ष्म शरीर भी निर्मित हो जाएगा। सभी समझ ले इस बात को, सूक्ष्म शरीर मन के वाइब्रेशन से बनता है। अभी आप यहाँ बैठ के सोचो, मैं नीचे शांति स्तंभ पर बैठी हूँ, तो वहाँ आपका सूक्ष्म शरीर निर्मित हो गया, बन गया। तो अंत में हमारा ये सूक्ष्म शरीर बहुत ही क्लियर हो जाएगा, क्लियर माना अभी आत्मा और शरीर कैसे हैं, जैसे चिपके हुए हैं आपस में, जब तक ये बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा है तो आत्मा जैसे देह से चिपकी हुई है, तो स्वतंत्र नहीं है, इसलिए कहा कर्म बंधनों से मुक्त। ये कर्मों के भी बंधन हैं जन्म जन्म के, और देह के भी बंधन हैं, जो इससे जितना न्यारा होने का अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा ये देह दोनों अलग अलग, उतना ही ये बंधन छूटता जाएगा। इसको शुरू में बाबा कहा करते थे, वस्त्र टाइट नहीं होना चाहिए, ये वस्त्र है ना हमारा, वस्त्र हम टाइट पहन लें तो उसे उतारने में देर लगेगी, हमारा वस्त्र लाइट लूज, तो ये देह हमारा वस्त्र, मैं आत्मा बिल्कुल इससे अलग, इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है। सब ध्यान देंगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो, योग में किसी को कठिनाई हो सकती है कि मन एकाग्र नहीं होता, बुद्धि इधर उधर बहुत भटकती है, पर सिंपल प्रैक्टिस तो चालू कर दो, मैं आत्मा हूँ, जिसको योग लगता ही नहीं वो कल हर घंटे में 10 बार याद करके देखे, मैं आत्मा हूँ, कुछ भी नहीं और ज्यादा और प्रैक्टिस नहीं, मैं आत्मा हूँ, केवल ये हर घंटे में 10 बार, 100 से भी ज्यादा हो जाएगा ना, 12-14 घंटे में 150 बार हो जाएगा। और देखो शाम तक स्थिति, मन डीप साइलेंस में, गहरी शांति की अनुभूति में आ जाएगा। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज है हम सब के लिए बार बार प्रैक्टिस। इसके लिए सब अपने को तैयार करें। डबल लाइट होना ये और इम्पोर्टेंट बात है। इसी होल में अव्यक्त बाबा ने डबल लाइट क्या होता है ये बात क्लियर की थी। दो अर्थ हैं इसके। पहला, मैं आत्मा लाइट, सबको पता ही है ज्योति, देह भी प्रकाश का। जैसे ये स्थूल देह ही प्रकाश की देह में बदल गया, डबल लाइट हो गए ना। ब्रह्मा बाबा तपस्या करते करते, सभी ध्यान से सुन लें, गहन तपस्या करते करते देवान को इतना गला दिया कि उनका देह ही जैसे लाइट का हो गया। इसके लिए चाहिए बहुत अच्छी तपस्या। बाबा कहा करते थे, बाबा तो इस तन में ऐसे रहते हैं मानो इस तन में हो ही नहीं। यह शरीरीपन के अभ्यास, और इसके लिए हम सबको बहुत धुन लगानी पड़ेगी, जिसकी अब कमी है बहुतों में, सब में नहीं बहुतों में। जो बाबा मुरलियों में कहते हैं 84 का खेल पूरा हुआ, अब घर जाना है। मैं इसमें एक चीज और जोड़ दिया करता हूँ, अब सब कुछ यहीं छोड़कर और बाबा से सब कुछ लेकर वापिस जाना है। लेकिन इसके लिए, इस अभ्यास के लिए बहुत जरूरत रहेगी बेहद के वैराग्य की। अब तो वैराग्य शब्द ही नहीं होता, हम भी कहीं क्लास नहीं कराते आजकल वैराग पे, क्योंकि वैराग की बात सुन के लोग घबरा जाते हैं। ये करना पड़ेगा क्या? जैसे उस दिन बाबा ने कह दिया, हम क्लास में बैठे, माताएं भी आगे बैठी थी, तो बाबा ने कह दिया किसी भी देहधारी से संबंध नहीं जोड़ने, नए संबंध नहीं बनाने हैं। याद है बाबा माताओं को 5-7 दिन पहले? फिर कहा घर में बच्चा पैदा हुआ, हुई मुसीबत। अब ये सुन के मैं माताओं को देखने लगा, चेहरों पे क्या क्या आ गया, बेचारी उदास हो गई। हम तो घर में खुशियां मनाते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, ये भगवान क्या बोल रहा है? हुआ ना माताओं को ऐसा? लेकिन ये केवल भगवान ही कह सकता है ना, गुरु भी नहीं कह सकते, कोई मनुष्य कह नहीं सकता है। वैराग्य, तो मैं हंसी की बात सुना दी आपको, बाबा ने कहा वैराग्य। कुछ आत्माओं को समय वैराग्य दिलाएगा, लेकिन महत्व किसका हो जाएगा? देखो बाबा को सबको संपूर्ण बना के ले जाना है। बाबा साकार में कहते हैं, तुम ऐसे नहीं चलोगे तो तुम्हारे शरीरों को जलाकर, ये भी भगवान के सिवाय कोई नहीं कह सकता, तुम्हें पावन बनाकर साथ ले चलूंगा, मार पीट के भी ले चलूंगा। तो समय वैराग दिलाएगा और उस वैराग का रिजल्ट मिलेगा, सब तेज पुरुषार्थ में लग जाएंगे, सभी मरने लगे, सबको पता चल जाएगा, अब तो मरेंगे सब, रोएंगे भी नहीं, फिर किस किस के लिए रोएंगे, ये तो सभी जा रहे हैं। वैराग्य आ जाएगा, लेकिन वो वैराग्य कैसा होगा? सुखदायी नहीं, सूखा। जब जबरदस्ती आत्माएं योग लगाएंगी, बिना खुशी के योग लगाएंगी, जैसे ध्यान लगाएंगी बाबा में, बाबा बाबा करेंगी, कुछ भी करने से हर आत्मा की अपनी संपूर्ण स्थिति आ जाएगी। कुछ भोगनाएं बहुत भोगेंगे, कुछ योग करेंगे, लेकिन जिन्होंने पहले से ही वैराग्य को धारण करके अपनी स्थिति को महान बना लिया होगा, वो क्या करेंगे? आज की इस मुरली में वरदान में थी वो बात, जो अनंत वाहक द्वारा सेवा करेंगे, सेवा के दो स्वरूप होंगे, साक्षात्कार और संदेश देना। तो जिन्होंने लंबा काल वैराग्य धारण करके अपने को योगयुक्त बनाया होगा लंबा काल, वो संसार की बहुत आत्माओं को साक्षात्कार कराएंगे। कराएगा तो बाबा ऊपर से, पर जो योग्य होंगे उनसे होगा ना साक्षात्कार। अभी बाबा किसी के द्वारा साक्षात्कार करा दे, ये इस देवी है, हजार लोगों को साक्षात्कार हो जाए आपके गांव में, वो भाग आए आपके पास, और जब आपका दर्शन करें तो इस देवी उदास बैठी हो, तो क्या कहेंगे भगत? ये कुछ गड़बड़ हो गई भाई, ये नहीं थी, कोई और थे वो, तो हो जाएगा नहीं। इसलिए जब संपन्न हो जाएंगी आत्माएं साक्षात्कार मूर्त, जिनकी आंखों से मस्तक से प्रकाश निकलेगा, जिसको देखकर आत्माओं की प्यास बुझेगी, तब ये खेल शुरू होगा। तो फिर से आ जाएं हम वहीं, डबल लाइट, मैं आत्मा लाइट और देह भी, और भी सबको ख्याल रहे आत्मा दो शरीरों में ही विराजमान रहती है सदा। बाहर है स्थूल शरीर और इसमें इसी तरह का समाया हुआ सूक्ष्म शरीर, लाइट का शरीर। तो ऐसा अभ्यास कर लेना चाहिए, जैसे स्थूल शरीर हमसे अलग कर दिया और मैं आत्मा लाइट के शरीर में रह गई। यह है डबल लाइट, यह है हमारा फरिश्ता स्वरूप। दूसरा डबल लाइट का अर्थ है मैं आत्मा लाइट और मन भी लाइट। मन लाइट माना मन हल्का, बोझ नहीं। अब ये एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस है, जिसके पास ज्ञान का बल बहुत है, जिसे बाबा का, बाबा क्या है उसका संपूर्ण ज्ञान है और उस पे पूरा निश्चय है, वही निश्चिंत रह सकते हैं। निश्चिंत रहना सहज काम नहीं है, कहने से नहीं चलेगा कि निश्चिंत हो जाओ। बहुत बड़ा ज्ञान चाहिए, बाबा में बहुत बड़ा विश्वास, उसकी शक्तियों को पहचानना, तब हम रहेंगे लाइट। दूसरा लाइट रहने के लिए हमें ड्रामा के ज्ञान को प्रैक्टिकल में प्रयोग करना चाहिए, लंबा काल, रोज, अभी से, बहुत पहले से। ये संसार एक खेल की तरह चल रहा है, यहाँ सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। सोच के देखो, अपने सब बच्चों को देखे माताएं, ये सब आत्माएं हैं, अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। ये मेरे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? माताएं बच्चों से बड़ी तंग, सुनते नहीं हैं। बहुत ये क्वेश्चन है खास माताओं का, भाइयों का नहीं। भाइयों की सुनते हैं, माताओं की नहीं सुनते बच्चे, क्यों? क्यों बताओ? प्यार ज्यादा करती है, क्या करती है? लाड प्यार ज्यादा करती हैं तो सुनते नहीं। फिर माताएं ज्यादा सहनशील होती हैं, आप भी है ना, सभी माताएं सहनशील हैं, बहुत होती हैं माताएं सहनशील। तो हमें बहुत हल्का होने के लिए इस ड्रामा के ज्ञान को यूज करना है, इसका सुख लें सभी, ये खेल चल रहा है। यहाँ तो घूमने जाते होंगे आप सब पहाड़ियों पे, जब हम थे हम भी बहुत जाते थे, उधर जरा डर रहता है पहाड़ियों पे, भालू वालू ज्यादा आते हैं। कैसा सुंदर खेल है ये, कैसे सतयुग से प्रारंभ हुआ, धीरे 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 चलते चलते हम कहाँ पहुँच गए, और हम सभी कौन है इस ड्रामा के? एक्टर नहीं, ये कुछ और बोलो, हीरो एक्टर है। चिंतन करें जरा, और अब सभी आत्माओं को हमें लेकर जाना है वापिस, हम सब गाइड बनेंगे आत्माओं के, अपने घर चलो, उन्हें घर की राह दिखाएंगे। सोच के देखो, मन हल्का होता रहेगा। मन को बहुत हल्का करना ही है, करना है या नहीं? बहुत माताओं का थोड़ा भारी रहता है, बच्चों की शादी करानी है, अब बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को हिस्सा नहीं देना चाहते, कोई तो माँ को भी निकाल देते हैं घर से, कैसे हल्का रहेंगे? माताओं से पूछ रहा हूँ मैं। सारे बोझ बाबा के हवाले करें, ये भी कहने से काम नहीं होगा, ये भी गहरी बात है। बाबा को अपने परिवार में शामिल कर लो, उसको अपने परिवार का हेड बना दो। प्रैक्टिकल करना होगा, उसको रोज भोग भी खिलाना होगा। परिवार में लाए तो ऐसा नहीं भोग नहीं खिलाना, भूखा रह जाएगा ना, फिर आपकी जिम्मेदारी कैसे उठाएगा? विचार करना इस पर, दे दो अपने मन के सारे बोझ उसे। ये बात बहुत गहरी है, नहीं तो क्या कहते हैं सभी, हम तो रोज मन के बोझ देते हैं लेकिन सवेरे उठते फिर आ जाते हैं। इस रहस्य को भी समझना है, अपने अंदर भी ज्ञान योग का बल बढ़ाना है। ऐसे ही बाबा को कह दिए, बाबा ये बोझ तुम्हारा तुम ले लो, मन में फिर चलने लगेगी वही बातें, रिपीट होने लगेगा, टेंशन हो जाएगी, मन भारी हो जाएगा, लेकिन मन के बोझ बाबा को देकर हल्के होना, ये एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस है। इस तरह हम सभी डबल लाइट हो जाएं। प्रैक्टिस करेंगे बहुत। अब इम्पोर्टेंट चीज, इस अंतःवाहक शरीर के द्वारा अब सेवा करनी है। आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं, लौकिक से शुरू करो, तो अभ्यास करो, मैं आत्मा इस सूक्ष्म शरीर सहित उसके पास पहुंच गई, और उसको कह कर आओ। किसी आत्मा को शांति देनी है, उसके पास पहुंच गए, उसको दृष्टि दी, शांति के वाइब्रेशंस दिए। कुछ ऐसे धर्म हैं, दो विशेष रूप से, मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियन धर्म, जो फरिश्तों को बहुत मानते हैं। हम जब अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, और पूर्वज, मैं पूर्वज हूँ, सभी धर्मों की आत्माओं का पूर्वज, तो इन धर्मों की आत्माओं को हमारे फरिश्ते स्वरूप दिखने लगेंगे, और जो कुछ हम उन्हें मैसेज देंगे वो उन्हें स्वीकार कर लेंगे, काम सहज हो जाएगा। हम जानते हैं दोनों ही धर्म वाले बाबा के संदेश को जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन जब फरिश्ते स्वरूप द्वारा उन्हें संदेश मिलेगा तो उनमें उनकी भावना है, वो उसको सत्य स्वीकार कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ी सेवा इन दो धर्मों के लिए अंतकाल में होनी है, क्योंकि हम टीवी से भी संदेश दे दें, सारा संसार सुन भी ले, लेकिन सुनना काफी नहीं जब तक वो उसे स्वीकार न करें। तो हमारे फरिश्ते स्वरूप द्वारा साक्षात्कार और संदेश देने का बहुत सुंदर कार्य चलेगा। विनाश काल में एक और काम चलेगा, जब हम इस स्वरूप में बहुत अच्छे स्थित रहने लगेंगे तो विनाश काल में ऐसा लगेगा, लोगों को दिखाई देगा फरिश्ते यही हैं, हमारे मदद देने वाले, हमें जीवन दान देने वाले, हमें सहारा देने वाले, ये रहे सामने दिख रहे हैं, तो आत्माएं निर्भय हो जाएंगी, उन्हें बहुत बल प्राप्त हो जाएगा, और यदि वो शरीर भी छोड़ेंगे तो बहुत शांति और आराम से छोड़ेंगे। तो सभी इस पे ध्यान दें, ये बहुत बड़ी सेवाएं बाबा की हम सबको करनी है, करेंगे ना? ये माताएं सोचती हैं घर में रहने वालों का ये काम नहीं है, है सबका। जो अपने को तैयार करे उसके द्वारा बाबा ये सेवा लेगा। देखो, दिव्य दृष्टि की चाबी तो बाबा के हाथ है, वो किसी को देता नहीं। पूरा अधिकार उसका है इस पर। उसने बता दिया था अगर तुम्हें दे दूं तो तुम बिगाड़ने लगोगे काम फटाफट, चाबी का मिसयूज हो जाएगा। लेकिन ये चाबी मैं अपने पास रखता हूँ और इसके रिटर्न में तुम्हें स्वर्ग दे देता हूँ। कोई स्वर्ग के बादशाह बन जाएंगे, कोई स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। जो अपनी स्थिति जैसी बना लेंगे, बाबा उनकी स्थिति के द्वारा वैसी ही सेवा कराएंगे। ये काम होंगे बाबा के, लेकिन कराएंगे उन आत्माओं के द्वारा जिन्होंने अपनी स्थिति वैसी बनाई होगी। तो अपने को कर्म बंधन से भी मुक्त करते चलें। देखो जब माताएं सेवा में आती हैं तो मैं बहुत खुश होता हूँ। क्यों होता हूँ? बहुत सारी माताएं ऐसी हैं दुनिया में जो घर से निकलती ही नहीं, कहेंगे ये काम वो काम ये काम वो काम। एक माता ने कहा, अब से 6 मास पहले की बात है, पहचान की है, कहा मेरे 2 बच्चों की शादी हो रही है, ये शादी कर दूं फिर तो मैं भी आपके साथ सेवा में चला करूंगी। शादी कर दी और अब सेवा में जाना तो छोड़ो, बाबा से मिलने भी नहीं आ सकी। ये कर्म बंधन है। हमने बहुत कहा पैसे वाले हैं, एक दिन के लिए भी आ जाओ फ्लाइट प्लेन से, नहीं आ पाई। ये कर्म बंधन है, इनको तोड़ना कैसे? जबरदस्ती नहीं संभव है कि निकल जाओ, जबरदस्ती संभव नहीं है। कर्म पीछा करेंगे आपका, वो आपको बांध के रखेंगे। एक अनुभव सुना दूं, बड़ा अच्छा अनुभव है, यही की बात है। तब सेवाधारियों को मैं संभालता था, बहुत पहले की बात है, 30 साल पहले की होगी। एक माता आई, कहा मुझे भाई 4 मास यहाँ रहना है, रहने देना। मैंने कहा क्यों? घर में बहुएं बहुत तंग करती हैं, मेरा मन बहुत अशांत है, मैं 4 मास यहाँ शांति में रहना चाहती हूँ। हमने कहा रहो भाई, तब माताएं बहुत तो आती नहीं थी, चलो तुम रहना चाहती है रहो। रही वो, 1 मास मुश्किल से हुआ होगा, मेरे पास फिर आ गई, यहाँ भी मुझे कोई शांति में रहने नहीं देता, मैं जाऊं घर अपने, मेरे भाग्य में शांति नहीं है। ये इम्पोर्टेंट बात है, मैं आपको आगे भी सुना रहा हूँ। मैंने उसे पूछा हुआ क्या? अब वो माता थी बहुत सफाई पसंद। अभी ऊपर विशाल भवन में उन दिनों 70 माताएं एक साथ ही रहती थी, पार्टीशन नहीं थे। एक माता आई, अपना भीगा हुआ तौलिया उसकी बिस्तर पे रख दिया। अभी जो अति सफाई प्रेमी हैं उनके लिए ये सबसे खराब बात, लड़ाई शुरू। एक और माता आई, एक दिन उसका पैर उसके बिस्तर से टच हो गया, जमीन पे सो रहे थे, फिर लड़ाई शुरू। रोज लड़ाई होते होते उसने मान लिया मेरे भाग्य में शांति नहीं, यहाँ भी शांति नहीं। शांति तो है, कौन अशांत करता है मनुष्य को? अपना संस्कार। चलो माता ने गीला तौलिया रख दिया, कह दो माता यहाँ नहीं रखा करते, उठा लो, बात खत्म हो गई। उससे परेशान हो जाना ये अपने चित्त को स्वयं अशांत कर देना है। तब हम बाबा शुरू में जब हमें पहली डायरी मिली यज्ञ में ये सब चीज होती नहीं थी, मुझे लगता है 72 में हमें पहली डायरी मिली, किसी ने 20 डायरी छपाई और भाइयों को दी, 20 भाई थे यहाँ। उसमें एक स्लोगन था, हर पेज पे स्लोगन होते हैं ना, तब भी लिखे गए थे, कोई मनुष्य किसी को तंग नहीं करता, उसके संस्कार ही उसे तंग करते हैं। हमें ये बहुत प्रिय लगता था, तो हमें याद आया कि शांति अपने अंदर है, आत्मा शांत स्वरूप है। मनुष्य अपने संस्कारों से, ज्यादा सोचने की आदत से परेशान होता है। सफाई बहुत अच्छा गुण है, लेकिन वो हम में है, दूसरे में तो नहीं है ना। हम माताएं अलग अलग क्षेत्रों से आती हैं, कोई गांव से है, किसी को पता ही नहीं होता कि तौलिया नहा के वहां नहीं रखना होता, उनको तो सीधी सी बात छोटे घर में रहती है, डाल दिया ऐसे या अपने विस्त उस पे ही सुखा दिया अपनी अटैची पे ही। तो हरेक को इन चीजों का ख्याल नहीं रहता है, इसलिए हमें अपने चित्त को स्वयं शांत रखना चाहिए। जहाँ एक साथ बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ भिन्न भिन्न संस्कार, भिन्न भिन्न विचार, भिन्न भिन्न कर्मों वाली आत्माएं सब एक साथ है ना, इसलिए बहुत अच्छी धारणा सभी बना लें, दूसरों को सुख देना, दूसरों का भी ख्याल रखना ये बहुत जरूरी है। जब हम शांतिवन में रहते हैं ना, हंसी की बात सुना दूं, तो जहाँ हमारा कमरा है सामने ही माताओं का एकोमोडेशन है, तो अगर हम 3 बजे भी उठ जाए ना और मैं बाहर को आऊं तो माताओं के बाथरूम से लड़ने की आवाज आती रहती है, जल्दी निकलो, देर कर दी तुमने, हमें योग में जाना है, और वो माता अपना कपड़ा धोने में बिजी है, वो उसका सुन नहीं रही, बाल्टी भी बिजी कर दी है कपड़े भिगो के। तो माताओं को ध्यान रखना चाहिए, क्या दूसरों का ध्यान रखना। संगठन में हम अकेले नहीं हैं, घर में के 1 घंटा नहाते रहें, पानी भी 5-7 बाल्टी खत्म कर दें, या मधुबन में जब जब अकाल पड़े हम लोगों को केवल 1/2 बाल्टी पानी में नहाना होता था, केवल 1/2 बाल्टी, उससे ज्यादा संभव ही नहीं थी। ऐसे 4-4 साल अकाल हमने देखे, यहाँ नक्की भी पूरी सूख गई थी, हम म्यूजियम जाते थे इधर से ही नक्की में उतर जाते थे, उधर निकल जाते थे, पूरी सूखी हुई थी, एक बार छोटी सी नदी रह गई थी। तो दूसरों का ध्यान रखना, मैं तो इसको कहता हूँ ये राजाई संस्कार है। राजा प्रजा का ध्यान रखता है, और जो राजा प्रजा का ध्यान नहीं रखता उसका राज्य चला जाता है। ये सभी मतलब ये अपना एक संस्कार बना ले, बात यहाँ की नहीं है, हर जगह हम दूसरों का भी ध्यान रखें। माताओं को ये संस्कार होता है और इसको बढ़ाएंगे, खाना सबको खिला के बाद में खाती है ना, ये तो नहीं ना मेहमान आए बाद में पता नहीं बचे न बचे पहले मैं खा लूं, ये तो नहीं करते ना, पहले सबको खिलाएंगे, जैसा बचेगा ठीक है, संतुष्टि होगी ना खिलाने की, सुख देने से बहुत गुड फीलिंग हमें होती है। इसलिए सभी भाई बहने इसको अपना संस्कार बनाएं कि हमें जैसे बाबा ने सुख दिया है, गीत बन गए, भक्ति तक गीत चलते रहे, सुखदाता उसका गायन होने लगा, इस देव देवियों का भी तो यही गायन है ना, और वो सब कौन है, हम सब हैं, तो सुखदाई बन जाएं, और जब इकट्ठे रहते हैं तो एक दूसरे का ध्यान अवश्य रखें, रखना ही है। आजकल बहुत बड़ी माया मोबाइल भी है, किसी का रात को 12 बजे ही बज जाता है, अब माता इतने अपने बैग से थैली निकाले, थैली में मोबाइल रखा है, अंधेरे में कैसे दिखे, तब तक तो सब जग जाते हैं, बंद करना भी नहीं आता कईयों से, तो केवल खोलना आता है, अब ढूंढेंगे तुम बंद कर दो जल्दी, इसका ध्यान रखना है। कई लोगों के कमरों में लड़ाई इसी बात पर होती है कि वो दिन में 3 बजे फोन उठाते रहते हैं, और बात भी धीरे नहीं करेंगे, सारा संसार सुन ले इस आवाज से करते हैं, तो फिर लड़ाई होती है, दूसरों को परेशानी होती है, वो बेचारे अभी आके सोए थे, उन्हें ड्यूटी पे जाना है, सबका ध्यान रखना है। मोबाइल भी सुखदायी है पर कष्टदायक न बन जाए, इन चीजों का सब ध्यान रखेंगे, और ध्यान दें इस बात पर, दोनों गुहिये बातों पर, सुख सुमान का त्याग करते चले, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं सुनाया करता हूँ वो बात जो बाबा साकार में कहते थे, ब्रह्मा बाबा को बहुत नशा था ना, उनसे ज्यादा नशा तो उन जैसा नशा किसी को हो ही नहीं सकता है। बाबा कहते थे अरे बच्चे तुम्हें तो भगवान सम्मान दे रहा है, मनुष्यों से मान लेकर क्या करोगे। बहुत प्रिय ये बात है। ऐसा नशा हो जाए, सचमुच भगवान अपने बच्चों को सम्मान देता है। ये केवल कहने की बात नहीं है, जब वो हमारी सभा में आकर बैठता है तो उसके मन में सबके लिए प्यार तो होता ही है, लेकिन एक बहुत श्रेष्ठ फीलिंग भी होती है। ये सब महान आत्माएं हैं इस सृष्टि की, सृष्टि में तो हम ही रहे हैं ना सदा। तो बाबा का भी ये दृष्टिकोण रहता है, उसकी दृष्टि रहती है ये सब सृष्टि की महान आत्माएं हैं। बस ऐसे ही हम भी करें तो मान की इच्छा से परे। चलो यहीं का गीत बजाओ, उधर का बजाओ, उधर का बजाओ। चलो ओम शांति।